अब ये आज का चर्चा का आखिरी श्लोक है और इसमें बताया जाएगा कि कौन है जो समझ पाएंगे। आप कह रहे हो कोई नहीं समझ पाएगा, तो इस जगत में तो सभी लोग मोहग्रस्त होते हैं, तो कोई समझ भी पाएगा कि नहीं समझ पाएगा। तो यह है उस पे वो बोल रहे हैं, मेरे पीछे भाई के बोलिए, येषां तु अन्तगतं पापं
येषां तु अन्तगतं पापं
जनानां पुण्यकर्मणां
जनानां पुण्यकर्मणां
ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता
ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता
भजन्ति माम दृढव्रताः
भजन्ते माम दृढव्रताः।
आपको याद हो तो हमने चर्चा किया था कि कृपा होती है तो दिव्य ज्ञान होता है, दिव्य ज्ञान होती है होता है तो उपासना होती है, भगवान की पूजा करता है भगवान की, और उपासना होती है तो भगवान का साक्षात्कार होता है। तो अब समझ में आया, ये शाम तू अंतगतम पापम, सारे लोग इस इच्छा और द्वेष के मोह से मोहित है, लेकिन जिनके पाप नष्ट हो चुके हैं, जनानाम जिन लोगों के पाप नष्ट हो चुके हैं और पुण्य कर्म जिन्होंने किए हैं, शुद्ध शुद्धि करने वाले कर्म किए हैं, ते द्वंद मोह निर्मुक्त, वह इस द्वंद और मोह से मुक्त होकर के, मैं शरीर हूं मान सम्मान की भावना, मान मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इससे मुक्त होकर के भजन ते माम दृढ़व्रता, मेरा दृढ़ता से भजन करते हैं। वो समझ जाते हैं कि जगत में कोई सुख नहीं है, भगवान की सेवा में ही सुख है। तो उसके पीछे कारण क्या है, पापों से रहित जीवन और शुद्ध भक्तिमय जीवन। तो इसीलिए जब हम सुनते हैं शुद्धता ही शक्ति है, तो इसका अर्थ आप सोचोगे कि प्रचार करने की शक्ति है, ये भी सही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी भक्ति में बने रहने की शक्ति शक्ति भी शुद्धता ही है। प्योरिटी इज द फोर्स टू कंटिन्यू इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। भक्ति में बने रहने के लिए भी शुद्ध जीवन बहुत आवश्यक है। कोई भी भक्ति में आ सकता है कैसे भी, लेकिन स्थिर वही रह पाएगा जो पुण्य जीवन जिए। मेरी बात समझ में आ रही है? भक्तों का अनुभव है कि जब हम चार नियमों को बहुत दृढ़ता से पालन करते हैं तो अद्भुत रूप से आपको भक्ति का उत्साह अपने आप ही प्राप्त होने लगता है। जब हम भक्तों का अपराध नहीं करते, भक्तों की सेवा करते हैं, है ना, पाप से निवृत्त रहे और पुण्य कर्म किया, शुद्ध करने वाले कर्म किए, तो अपने आप ही प्रेरणा बढ़ने लगती है भक्ति करने की। क्या ये अनुभव है या नहीं लगता आपको? सब ऐसे आंखें ऐसे लेफ्ट राइट कर रहे हैं, पता नहीं भाई, आप पिक्चर देखेंगे तो उसके बाद अगले दिन तो जब अच्छा होगा ना आपका, शाहरुख खान याद आएगा, मतलब पता नहीं, मतलब हम हमारे जमाने का हीरो था, अभी पता नहीं है कि नहीं, कहां से कृष्ण याद आएंगे। जो व्यक्ति पूर्व में जा रहा है वो पश्चिम में नहीं जा सकता है। एक भक्त एक रिकॉर्डिंग भेजे, मेरी ही बात सुने थे लेकिन समझे कुछ और, बोले कि भोग और भक्ति साथ साथ चलते हैं। हमने कहा साथ साथ नहीं चलते, बोले साथ साथ चलते हैं, हम दोनों का चुनाव करना पड़ता है। हमने साथ साथ नहीं चलते, उल्टा चलते हैं, भोग भगवान से विपरीत चलता है। वो सोच रहे थे से हम लोग यहाँ पे एप्पल और चीकू के बीच चुनाव करते हैं, दोनों एक जगह रखे रहते हैं, ऐसा नहीं है, भोग बिल्कुल अलग दिशा में चल रहा है। आत्मेंद्र प्रीति वांछा तारी बोले का, और कृष्ण की प्रीति के लिए जो कार्य कर रहे हैं वह प्रेम आ जाता है। तो अगर हम पूर्व दिशा में जा रहे हैं तो पश्चिम में नहीं जा सकते। हाँ, अब सोचिए आग के ऊपर अगर पानी बना जाएगा तो हमारा भी उत्साह कम हो जाएगा ना, आग जला रहे हैं और पानी गिरा दे रहे। देखिए निरुत्साह नहीं होना चाहिए, लेकिन दृढ़ता से भक्ति हम तभी कर पाएंगे जो हम शुद्ध जीवन जी। ठीक है, जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर रहते हैं। देखे ना संकल्प वाली बात, नहीं तो हमारा संकल्प किससे बाधित हो जाएगा, दुख से सुख से, मान से अपमान से। और क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं कि इनकी सृष्टि की जा रही है हमारे कर्मानुसार? मैं इससे पहले आगे बढ़ूं, आप मैं जानना चाहूंगा कि आप ये समझ पा रहे हो कि नहीं। क्या आप ये समझ पा रहे हो कि मान सम्मान सुख दुख हानि लाभ की सृष्टि की जा रही है हमारे कर्मानुसार? नहीं समझ में आ रही बात? सुख दुख हम चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि दुख आए, दुख की व्यवस्था की जाती है, जैसे हमारे प्लेट में सर्विंग की जाती है वैसे, उसी प्रकार से अपने आप ही अच्छा खाने को मिल जाता है, बुद्धि प्राप्त हो रही है, कहीं मान मिलता है और कहीं फालतू में असम्मान भी प्राप्त होता है, होता है कि नहीं? अगर उसी के बारे में हम रोते रहेंगे तो वह समय गया ना भक्ति के अकाउंट से। ये सृष्टि की जा रही है माया के द्वारा, ये समझ में आती बात? और साहब उन्होंने मेरा बहुत अपमान किया। किसका अपमान किया? एक भक्त गुस्सा हो गए थे तो मैंने बोला, उसने ऐसे मुझे बोल दिया। किसको बोल दिया? आपको देख पा रहा है जो आपका अपमान करेगा? क्या आपको देख पा रहा है आपका सम्मान करेगा? और इसके लिए आप पता नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को, समझ ही रहे होंगे, सम्मान के लिए पूरा जीवन व्यर्थ कर देता है। भाई हमको बड़ा मानते हैं, क्या मानते हैं आप? समझ पा रहे हैं? इस शरीर को ही तथाकथित, शरीर को तथा शरीर को तथाकथित मान सम्मान प्रभुपाद कहते हैं झूठा सम्मान, क्योंकि वह तो आपको देख ही नहीं रहा है, तो सम्मान क्या करेगा? इसके लिए व्यक्ति पूरा जीवन समर्पित कर देता। डज इट मेक सेंस? ये जितना आसान हम बोल रहे हैं उतना आसान है नहीं इसे निकलना। गीता भूषण टीका, आपके इस कथन से तो लगता है कि कोई भी आपकी भक्ति कर ही नहीं पाएगा क्योंकि हर जीव मोहित ही होता है। ठीक है बड़ा सुंदर लिंक बनाते हैं आप, तो ऐसा बोल रहे हो कि कोई भक्ति कर ही नहीं पाएगा फिर। जिन, तो भगवान कहते हैं नहीं, जिन्होंने भाग्य से, बहुत ध्यान पूर्वक, बहुत सुंदर लाइन है, जिन्होंने भाग्य से महत पुरुषों की कृपामय दृष्टि प्राप्त करके अपने पाप नष्ट कर लिए। कैसे पाप नष्ट हुए? भक्त संग से। और जिन्होंने उन महत पुरुषों को प्रसन्न करने वाले कार्य करके उनकी कृपा को प्राप्त किया है, ऐसे व्यक्ति मेरी पूजा करते हैं। दो लाइनें इसमें समझने वाली भी, बहुत सुंदर टीका है, बहुत सुंदर टीका है। देखिए, भक्त के सामने कोई आया तो भक्त के हृदय में क्या संकल्प होता है? ये व्यक्ति भोग में पड़ा हुआ है, दुखी है, कितना अच्छा होता कि ये भक्ति करता। तो मैं समझता हूं जितने भी भक्त यहां उपस्थित हैं, इतनी कृपा तो आपके हृदय में उदित होती है, किसी से मिलते हैं तो आपकी इच्छा होती है काश ये भक्ति करता। क्यों भाई? चाहे हम एकदम छोटे से छोटे भक्त भी क्यों ना हो, एकदम एटॉमिक साइज के, लेकिन वह जितनी मात्रा हमने भक्ति की है, भक्ति हृदय में आई है, ये हृदय में जरूर इच्छा आती काश ये भक्ति करते, होता है कि नहीं? तो यह है उनकी कृपामय दृष्टि भक्तों की। यह तो आपके हृदय में कभी नहीं आता होगा, काश ये व्यक्ति कभी भक्ति न करता। किसी के प्रति आती है भावना? अभी तो आप ये देखेंगे कि जो जिन्होंने आपके संग बुरा भी किया हो उनके प्रति भी हमारे हृदय में इच्छा आती है, अरे वो, उनको पता नहीं था कि वो क्यों क्या कर रहे हैं, काश वे भक्ति कर रहे होते तो अच्छा होता। आप मेरी बातें समझ पा रहे होंगे? जैसे बुरा से बुरा व्यक्ति के बारे में भी आप सोचेंगे कि काश वो भक्ति कर पाता, होता है कि नहीं? होता है, होता है। या ये भक्ति की वजह से होता है, भक्ति जब नहीं कर रहे होते तो हमें कुछ नहीं आता। तो अब यहां पे बात यह है कि उस कृपामय दृष्टि को प्राप्त करके व्यक्ति के हृदय में भक्ति की, भक्ति देवी की कृपा उसे प्राप्त हो जाती है। भक्त की इच्छा आई है तो उस वजह से भगवान उस पर कृपा करते हैं, उसको भगवान की बात समझ में आने लगती है, अब वह भक्तों के प्रति आकृष्ट होता है। महाराज बहुत सुंदर समझा रहे थे कि साधु संग, श्रद्धा होती है, कुछ अच्छा लगा उसको और फिर वो साधु संग करता है। साधु संग का मतलब साधुओं में आसक्ति, साधुओं से बार बार मिलने की इच्छा होती है, उनके संग बैठने की इच्छा होती है। केवल हरे कृष्णा करने से उतना अच्छा नहीं होता। Does it make sense? बार बार जाकर के कथा सुनने की इच्छा होती है। और हम सभी के संग ऐसा हुआ है, आप देखिए कि जो प्रोसेस शास्त्र में दिया गया वह हम पालन कर रहे हैं। और साधु संग में वो बार बार आता है, फिर वह ऐसे कार्य करता है जो साधुओं को प्रसन्न हो। जैसे आप किसी को बोलते हो एक माला जप कर रहे हो क्या? हाँ प्रभु जी कर रहा हूँ। आपको अच्छा लगता है कि नहीं? आप ऐसा तो नहीं सोचते हाँ मैंने इसे हरा दिया, देखो मेरी बात मान रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। स्वाभाविक रूप से आप किसी से एक माला करने के लिए बोलते हैं और वो करता है तो उसे अच्छा लगता है, तो उसने पुण्य, पुण्य का अर्थ है साधुओं को प्रसन्न करने वाले कार्य किए। फिर समझ लेना चाहिए यही वैष्णव सेवा का, ये हमारे भक्ति के जीवन से कितना संबंध है। भक्तों को सुख दिया हमने तो हमारी ये जो क्या है, मोह नष्ट हो जाएगा, द्वंद्व नष्ट होंगे, भक्ति में स्थिर हो जाएंगे।
Does it make sense? Yes.
तो भक्तों के संग से दृढ़ता को प्राप्त होकर वह द्वंद्व के मोह से निवृत्त हो जाते हैं और मेरे संबंध में सच्चा ज्ञान प्राप्त करके मेरी पूजा करते हैं। समझ में आया कैसे दृढ़ता से होते हैं? अब वह सुख दुख लाभ हानि एग्जाम में नंबर कमाया जदाए उससे कोई मतलब नहीं। देखिए ऐसा मत सोचिए कि ऐसा नहीं होता है। IIT में जब मैं था उस समय जो लोग भक्ति कर रहे थे उनमें से कुछ लोग, अब एक एक व्यक्ति का मैंने सुना है IAS की तैयारी कर रहे हैं, सॉरी IAS हो गए हैं, अब भक्ति से भूल गए। वो आगे जाके भक्ति कर सकते हैं, हो सकता है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो थोड़ा सा जगत पे थोड़ा सा मान सम्मान मिल गया तो बस भक्ति को बिल्कुल भूल जाते हैं। तो ये जब हम भक्त संग में रहेंगे तब हमको समझ में आएगा कि भाई इससे हम सुखी नहीं होने वाले, सुखी तो हम भक्ति से ही होंगे। अगर आपने सुना हो गौर गोपाल प्रभु का बड़ा अच्छा वक्तव्य है कि देखिए मैं कितना भी प्रसिद्ध हो जाऊं जब मैं मंदिर में जाता हूं तो नीचे बैठ के सीनियर भक्तों से सुनता हूं। मेरा एक छोटा सा कॉर्नर है 3x6 का, वहां मैं सोता हूं। तो वह भूले नहीं है अपने आप को कि वह एक सिंपल ब्रह्मचारी ही है, दुनिया बाहर से कुछ भी उनको कहती रहे। बहुत अच्छी बात उनकी मुझे लगी थी कि हृदय में जो नम्रता है, जो ग्राउंडिंग है, वह नहीं हटी है। भगवान की कृपा से वह जो भी कुछ प्रचार अच्छा कर पा रहे, बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं, लेकिन खुद अपनी स्थिति को भूला नहीं है व्यक्ति। Does it make sense? कभी नहीं भूलना चाहिए। तो ये बात है कि भक्तों के संग से वह द्वंद से निवृत्त हो जाते हैं और वह भक्ति में दृढ़ होते हैं। तो भक्त संग के द्वारा ही हम दृढ़ता से भक्ति कर सकते हैं, ये हम सीख रहे हैं। भक्तों के संबंध में स्मृति वाक्य है। अब ये क्यों कर रहे हैं कि भाई कोई कहेगा कि भक्तों की कृपा में दृष्टि प्राप्त कैसे होगी, भक्त कहाँ है, भक्त तो है नहीं। तो क्या बोल रहे हैं, देखिए, विष्णुर भूतानि भूतानां पावनाय चरन्ति हि। भगवान विष्णु के सेवक इस जगत में भ्रमण करते हैं ताकि अन्य जीव शुद्ध हो सके। अमर कोश के अनुसार पुण्य का अर्थ है प्रसन्न करने वाला। तो पुण्य कर्म का अर्थ समझ में आया। पाप कैसे नष्ट हुए, पहले हम थोड़ा क्विज करेंगे, पाप कैसे नष्ट हुए उनके? आपने तो खाली डिसाइन कर दिया, भक्तों को देखा और भक्तों के ने, जैसे आप किसी को किताब वितरण करते हो, उसने कौन सा आपकी सेवा कर दी? कोई सेवा नहीं करी। अहेतु की रूप से बोलते ये किताब लेगा उसका कल्याण हो जाएगा, तो इसलिए कुछ उसने पाप नष्ट हुए उसके। और पुण्य का अर्थ क्या हुआ, पुण्य कर्म का अर्थ क्या है? कुछ भक्तों को अच्छा लगा, भक्त उसको अच्छे लगे और कहा कि हम भक्तों की सेवा करेंगे। आप लोग, आप थे मेरे संग जब हम लोग भी भरतपुर में संकीर्तन करने गए, तो उस दिन तो गौर पूर्णिमा थी, हम लोग अन्न नहीं ले सकते थे, लेकिन हम लोग जब कीर्तन कर रहे थे लौटते में व्यक्ति आया वो बिस्किट बांटने लगा सबको। सब लोग थे ना, तो भक्तों को देख करके उसके पाप नष्ट हुए, कीर्तन सुन के पाप नष्ट हुए और उसने कुछ पुण्य कर्म भी किया। एक और उदाहरण आपको मैं प्रभुपाद जी के से देखता हूँ। आप जानते हो शायद, कुछ लोग उस कथा को सुने होंगे। प्रभुपाद जी फ्लाइट में थे और एक एक एयर होस्टेस आई और उसने प्रभुपाद जी मूढ़ी खा रहे थे, तो उसने पूछा आपको क्या चाहिए? उन्होंने कहा हमें थोड़ा गर्म दूध दे दीजिए। तो गर्म दूध लेने के लिए आई, लेके आई और उसने देखा प्रभुपाद कुछ वो मूढ़ी खा रहे हैं, तो उसने ऐसे हाथ ले मार करके छीन लिया और खा लिया। आगे जाकर के वह इस्कॉन की लाइफ मेंबर मैंने सुना बन गई, 16 माला जप करने लगी। हाँ, जो भी था। ऐसे एक और व्यक्ति प्रभुपाद जी विदेश में थे और उन्हें कहा कि वो जा रहे थे, रास्ते में एक दुकान देखी, उसमें एक विंडो थी, विंडो में दिखाते हैं ना बहुत सारी वस्तुएं दिखाई जाती हैं। तो प्रभुपाद जी अंदर गए, बोले कि क्या मैं यहाँ पे अपनी भागवत डिस्प्ले कर सकता हूँ? ऐसे ही सीधे पूछ लिया उस व्यक्ति को, और व्यक्ति मालिक नहीं था। तो एकदम तो चकित हो गया, कोई सन्यासी या कोई ऐसे साधु बन के आया है और सीधे बोल रहा है कि भागवत रख सकता हूँ यहाँ पे मैं। तो प्रभुपाद समझ गया कि बेचारा थोड़ा परेशान हो रहा है, बोला ठीक है आप थोड़ा पानी देंगे क्या मेरे को? तो उस व्यक्ति ने प्रभुपाद जी को, ऐसे भारतीय था मतलब, तो उसने पानी दिया। बाद में वह लाइफ मेंबर बन जाता है, भक्त करता है, भक्ति करने लगता है, 16 माला करने लगता है। महत सेवा द्वारा माहुर विमुक्ते। तो इसलिए हम हमें भक्तों की सेवा करने को मिलता है तो मिलता है तो बहुत ज्यादा है। रोज सर्विंग कौन करे, भक्तों को क्यों प्रसन्न करें? लेकिन एक चाहे नया भक्त हो चाहे पुराना भक्त हो, ऑब्वियसली जितना उच्चतर भक्त होगा उतनी अधिक कृपा प्राप्त होगी, लेकिन भक्त सेवा से हमें सुखी, हमारा ये द्वंद नष्ट होगा। भगवान स्पष्ट बता रहे कैसे नष्ट होगा, भक्तों को सुखी करके। खिड़की खोल सकते हैं, तात्पर्य पढ़िए।
इस अध्याय में उन लोगों का उल्लेख है जो देव पद को प्राप्त करने के अधिकारी हैं, जो पापी नास्तिक मूर्ख तथा कपटी हैं, उनके लिए इच्छा तथा घृणा के द्वंद को पार कर पाना कठिन है। केवल ऐसे पुरुष भक्ति स्वीकार करके क्रमशः भगवान के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करते हैं। जिन्होंने धर्म के विधि विधानों का अभ्यास करने, पुण्य कर्म करने तथा पाप कर्मों के जितने
जीतने में
अपना जीवन लगाया है, फिर वे क्रमशः भगवान का ध्यान समाधि में करते हैं। आध्यात्मिक पद पर आसीन होने की यही विधि है। शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत ही ऐसी पद प्राप्ति संभव है, क्योंकि महान भक्तों की संगति से ही मनुष्य मोह से उबर सकता है।
मैं समझता हूँ अब तो बिल्कुल स्पष्ट है समझाना। ध्यान समाधि, देखिए भगवान से ध्यान क्यों हट रहा है? आज बड़ा दुख लग रहा है कि आज हरे कृष्णा नहीं करेंगे, आज तो बिजनेस में बड़ी सफलता प्राप्त हुई, आज कहाँ हरे कृष्णा करेंगे? इसी में से ध्यान हट रहा है ना। सुखे दुखे भूले ना को वदने हरि नाम करो रे, गाए गोरा मधुर स्वर। तो सुख में हो चाहे दुख में हो, भगवान का नाम उच्चारण करते रहता है, तो ये कहाँ कर पाएगा? देखिए मैं अब अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ। जब मैं नौकरी कर रहा था, क्यों भाग के मैं आया ज्वाइन करने के लिए, ये बातें मैंने कभी किसी को बताई नहीं है, लेकिन मेरे को माला छूने का भी मन नहीं कर रहा था। एक दिन ऐसा हुआ था, अपितु मेरे साथ में जो 5 लोग कर्मी लोग थे, वो मुझे बोलने, चलो माला करते हैं, चलो कीर्तन करते हैं। मेरे को इतनी शर्म आ रही थी, क्योंकि ऐसा हो जाता है, आप भक्तों के संग रहते हो, इतना ऐसे एक होता ना, समुद्र की एक लहर वो दबा देती है। बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि हम साधना किए थे तो मैं उसका अनुभव भी था। तो ये भक्त संघ में ही इस प्रकार के मोह से हम मुक्त हो सकते हैं। कोई बीमारी नहीं थी, कोई कठिनाई नहीं थी, लेकिन हम रोज सुबह उठ नहीं पाते थे। तो इस प्रकार से भक्त संघ में ही हम लोग जो है इस मोह से मुक्त हो सकते हैं, कि आज ठंड है तो तभी भजन करना है, गर्मी है तो भी भजन करना है, मन नहीं लग रहा तो भी भजन करना है, मन लग रहा है तो भजन तो करना ही है। आप लोग अनुभव नहीं कर रहे इस लॉक जो भी सब चल रहा है, अगर हम लोग भक्त संघ में नहीं होते तो ना हम कुछ भक्ति ठीक से कर पाते। भक्ति करना छोड़ दीजिए, 6 बजे से पहले उठ नहीं रहते, अगर उठ जाते तो कितना कठिन होता और बहुत टेंशन रहते। तो भक्त संघ में है इसलिए आप अभी देख लो, भक्त संघ में है तो उतनी परेशानी का अनुभव, कुछ भी परेशानी का अनुभव नहीं हो रहा, थोड़ा प्रसाद में अच्छा नहीं होगा बस, लेकिन उतना परेशानी का अनुभव नहीं हो रहा जितना कि बाहर के लोगों को कष्ट हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना हम भी समझ लें कि हम भक्त बिना, भक्त संघ के बिना जिंदा ही नहीं रहेंगे भक्ति में, उतना उसके महत्व को समझ पाएंगे, उतना ही भक्तों के प्रति अपराध नहीं करेंगे। समझ में आ रहा? ये बहुत बड़ा गिफ्ट को क्या बोलते हैं, उपहार है भगवान का। अगर अपराध करते हैं तो भगवान उस उपहार को छीन भी सकते हैं, प्रेरणा देंगे, तुम बहुत परेशान कर रहे हो, चलो दूर चले जाओ। वो माया में देखो बहुत अच्छी चीज है, मजा के देखो, ये मजाक नहीं बोल रहा हूं मैं, देखा है मैंने, देखा है। तो इसलिए बचना चाहिए इस बात से।
श्रीमद् भागवत में
आप सोच लो, अगर हम लोग सुबह जब अभी कीर्तन कर रहे थे, खाली मैं और अनुपम कृष्ण प्रभु कर रहे थे शुरुआत में, और जब सब आ गए भक्त तो अच्छा लगता है कि नहीं? मंगल आरती में हम लोग जब शुरुआत की थी तो कौन था? मैं और पीतामर थे ना पहले दिन, फिर अब देखिए सारे भक्त लोग आ गए तो अच्छा लगता है कि नहीं? स्वाभाविक, सब जितने भक्त लोग बढ़ते हैं उतना और अच्छा लगता है। तो हर भक्त जो मंगल आरती आता है, जप में आता है, बस एक दूसरे के उत्साह को बढ़ाता है, ये बात तो उसमें कोई विरोध नहीं है ना। यस,
श्रीमद् भागवत के में 5वें स्कंद 5वें अध्याय 2 श्लोक में कहा गया है कि यदि कोई सचमुच मुक्ति चाहता है तो उसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए।
यस, प्रभुपाद से एक बार किसी ने पूछा, आपकी किताबें पढ़े और भक्तों का संग नहीं करेंगे चलेगा? बोलते नहीं। यहां तक और कठोर सुनिए, 4वें स्कंद में प्रभुपाद कहते हैं जो भक्तों का संग नहीं करता उसकी भक्ति की क्रियाएं भौतिक क्रियाओं से अलग नहीं होती हैं। भक्ति की क्रियाएं भी भौतिक क्रियाओं से अलग नहीं होती। प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट बोलते हैं कि भक्ति की क्रियाएं भी भौतिक क्रियाओं से अलग नहीं होती। आप तात्पर्य को देखिएगा, बिना भक्त संघ के हम कुछ नहीं कर सकते। पढ़िए, प्रभु जी ने बता भी दिया।
महत्सेवा द्वारम आहुर विमुक्ते। किंतु जो भौतिकवादी पुरुषों की संगति करता है वह संसार के गहन अधिकार
अच्छा
की ओर।
भक्त संग साधु संग कब कौन से भक्ति के लेवल तक करना होता है? मैं समझता हूँ जब तक रुचि नहीं प्राप्त होती तब तक करना होता, उसके बाद ना करना होता है। एक बार रुचि प्राप्त हो जाए फिर साधु संग की जरूरत नहीं है। प्रेम के भी भगवत प्रेम प्राप्त होने के बाद भी साधु संघ की आवश्यकता है। और पता है मैं साधु संघ क्यों खराब लगता है? क्योंकि कहीं कहीं इस एग्जाम्पल कहीं कहीं हमारे मिथ्याहंकार को ठेस पहुंचती है। हम सोच रहे होते हैं कि हम बहुत अच्छे भक्त हैं और कोई सीनियर भक्त आके आपको बोल देगा नहीं तुम ठीक नहीं कर रहे हो। जैसे मान लो हम जब में सो रहे हैं, अब रूम में सो रहे हैं तो कोई मना करेगा? रूम तो बोलेगा नहीं कि आप सो रहे हो। और कदाचित हम आज एक भक्त सो रहे थे जब में, तो मैंने ऐसे मुड़ के देखा, कुछ बोला नहीं, मैं देखता रहा। कभी आप किसी भी देखते रहो तो समझ जाएगा कि आप देख रहे हो। मैं देखता रहा, फिर उनकी नींद खुली, फिर हल्का सा मुस्कुराया, वो मुस्कुराया, फिर हम जब कर लिया। नहीं अभी नाम नहीं बताऊंगा। तो द पॉइंट इज दैट कि ये सब हम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, अफेक्शन है, अफेक्शन है। ये लोग सोचते हैं कि, और कभी मैंने एक भक्त को देखा है, भक्त सो रहा था, उस भक्त दूसरे भक्त ने आके जगाया उसको, भाई मैं तो नहीं सो रहा था, भाई क्यों जगा रहे हो? कोई आपको पागल तो ना, आप सो नहीं रहे थे, बड़े से माला करेंगे कोई जगाएगा? तो इस प्रकार से लोग बहुत बार सोचते हैं अकेले में भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, ताकि कोई उनका कुछ गलत हो रहा हो तो कोई कहे नहीं। जैसे महाराज हमारे बता रहे थे कि भरत महाराज अगर भक्तों के संग में जब कर रहे होते और हिरण के पीछे मतलब जो मोहित हो जाते, तो भक्त बोलते अरे यू आर ऑफ, क्या कर रहे हैं आप? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भक्त संग में रहें, ताकि हम ध्यान दीजिएगा जब हम माया में होते हैं तो हमको मालूम नहीं चलता कि माया में है। Does it make sense? तो इसलिए कोई बताने वाला रहे कि बता दे भाई तुम ये गलत कर रहे हो, ये चीज ठीक नहीं। Yes.
किंतु जो भौतिकवादी भौतिकतावादी पुरुषों की संगति करता है वह संसार के गहन अधिकार की ओर अग्रसर अंधकार की ओर अग्रसर होता रहता है।
संसार के गहन अंधकार अर्थात मैं कौन हूं, अपने स्वरूप की पूरी तरह से विस्मृति। ये बात हम सुन तो लिए हैं, क्या हृदय में जा रही बात कि मैं अगर भक्त संघ में नहीं रहता हूं तो बिल्कुल भूल जाता हूं कि मैं किसका दास हूं वास्तविक रूप से? माया का नहीं, भगवान का दास हूं ये भूल जाता हूं, और याद यही रहता है कि माया के जितने उत्पादन है उनका दास। ये बात ध्यान रखिएगा कि हमें समर्पण होना आता है और हमेशा हम समर्पित रहते हैं, लेकिन भगवान को ही समर्पित रहना है, इसकी शक्ति मुझे भक्त संघ में ही प्राप्त होती।
तमो द्वारम योषिताम संगी संगम, भगवान के सारे भक्त।
कितने लोग का अनुभव है जब आप लोग घर जाते हैं तो एक चीज बहुत खराब लगती है, वो है जप। यस, कोई भक्त बोल, मैं भी जब घर अपने जाया करता था तो मुझे बिल्कुल जप करने का मन नहीं करता था। इसमें घर का दोष नहीं है, कुछ ऐसा होता ही है कि भक्त का संग अगर नहीं होता है, भक्तों का संग नहीं होता तो हम नहीं कर पाते, और अगर कर भी रहे होते तो हाफ हार्टेडली करते हैं। अगर आप रूम में बैठ के कुछ, चलिए अब उस पर क्या बोला जाए, रूम पे बैठ के जब कर रहे हैं और कंप्यूटर भी कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कौन देखने वाला है? समाज में आदमी शर्म के मारे भी अच्छे से माला करता है दिखाने के लिए, प्रभु जी क्या सोचेंगे मैं कैसे कर रहा हूँ, सो रहा हूँ। पढ़िए,
भगवान के सारे भक्त विश्व भर का भ्रमण इसलिए करते हैं जिससे वे बद्ध जीवों को उनके मुंह से उबार सके। मायावादी यह नहीं जान पाते कि
ये बहुत अद्भुत बात है, लाइन बहुत सिंपल लगती है, लेकिन हृदय में इस बात को हम धीरे धीरे उतारें तो बहुत अच्छा होगा कि मेरे जीवन का लक्ष्य बस यही है, भक्ति करना और भक्ति करवाना, और कोई एस्पिरेशन इस जगत में नहीं रखनी चाहिए। जब तक हम इस जगत में हैं, स्वयं अच्छे से भक्ति करना और जितने लोगों को हम मदद कर सकें, प्रभावित कर सकें, उनको भगवान का सच्चा सेवक बनने की, मैं कहूंगा कि शिक्षा नहीं, मतलब ट्रेनिंग देना, एजुकेशन देना, बहुत अच्छी बात है। और कुछ इस जगत में और कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं है। यस,
मायावादी यह नहीं जान पाते कि परमेश्वर के अधीन अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलना ही ईश्वरीय नियम की सबसे बड़ी अवहेलना है। जब तक वह अपनी स्वाभाविक स्थिति को पुनः प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक परमेश्वर को समझ पाना या संकल्प के साथ उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में पूर्णता प्रवृत्त हो पाना कठिन है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, जब तक हमें संबंध ज्ञान ठीक से होगा नहीं, भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, मेरा क्या संबंध है, मुझे कैसे कार्य करना चाहिए, तब तक हम ठीक से भक्ति में दृढ़ नहीं हो पाएंगे। मैंने कल भी समझाया था कि भक्ति में जो श्रद्धा है वह कथा के द्वारा आती है। तो जब हम कथा नहीं सुनते हैं, ये वंशी नवीक सुनते हैं, जैसे भी थोड़ा थोड़ा सुनते हैं, तो फिर हमारी जो श्रद्धा है वो भक्ति में धीरे धीरे लुप्त होने लगती है। ठीक है, नहीं भी करेंगे तो क्या दिक्कत है, इस प्रकार की भावना। तो इसलिए आवश्यक है कि हम लोग भक्त संघ में नियमित रूप से कथा श्रवण को सेवन करते हैं। कोई प्रश्न है? श्रीमद भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद की जय।